ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। निगमकल्पातरोर्गलितं परं सुखमकदं मृतदिवसमृतं विविधभगतं रासमालयं मुहुरोराशिकभुविभावुकः नारायणं नमस्कृत्य नारं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नाश्रवयेष्वदेशो नित्यं भगवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। एते संसाकलापुंसं कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रियार्व्याकुलं लोकं हृद्यन्ते युगे युगे। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामदुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। श्रीमद्भगवतं से पर रहा है पंचम स्कंद अध्याय 19 श्लोक संख्या 28 यद्यत्र न स्वर्ग सुखावशेषितम् सृष्टस्य सुक्तस्य कृतस्य शोभनम् तेन जनाभे स्मृतिमच्चन्मना स्यात् वशे हरिर्यद् भजतं शन्तनोति। यदि अत्र इस स्वर्गलोक में न हमारा स्वर्ग सुख अवशेषितम् स्वर्गिक सुख बोने के बाद जो कुछ भी शेष रहता है सुइष्टस्य पूर्ण यज्ञ का सुउक्तस्य वैदिक साहित्य के पातन कार कृतस्य सुकर्म का शोभनम शेष कार्य तेना इस कार्य से अजनाभे भरतवर्ष में स्मृतिमज्जन्म भगवान के चरणों को स्मरण करने वाला जन्म न हमारा स्यात् हो वर्षे देश में हरि श्री भगवान यत् जिसमें भजतम भक्तों का शमतनोति कल्याण का प्रसार करता है। अनुवाद और तात्पर्य शिल ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा शिल प्रभुपाद के अनुवाद यज्ञ पुण्य कर्म अनुष्ठान तथा वेदाध्ययन करते रहने के कारण स्वरूप हम स्वर्ग लोग में वास कर रहे हैं। किंतु एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा भी अंत हो जाएगा। हमारी प्रार्थना है कि उस समय तक यदि हमारे एक भी पुण्य शेष रहा है तो हम मनुष्य रूप में भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने के लिए भरतवास में जन्म ले। श्री भगवान इतने दयालु है कि वे स्वयं भरतवर्ष में आता है, यहाँ के वासियों को सौभाग्य प्रदान करते हैं। तत्पर्य निसंदेह पुण्य कर्म के फलस्वरूप ही स्वर्ग लोक में मनुष्य जन्म लेता है, किंतु वहां से उसे पुनः मर्त्य लोक में आना पड़ता है। जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशांति, यहां तक कि देवताओं को भी पुण्य क्षीण होने पर पृथ्वी पर लौटकर सामान्य व्यक्तियों की तरह कार्य करना होता है। तो भी देवतागण भरतवास की भूमि में आने की कामना करते रहता है। यदि उनके पुण्य कर्म के फल का थोड़ा सा भाग भी बचा हो, दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि भरतवर्ष में जन्म लेने के लिए देवताओं से भी अधिक पुण्य करने पड़ते हैं। भरतवर्ष में स्वाभाविक रूप से मनुष्य कृष्ण भवन भावित रहता है, और यदि श्री कृष्ण की कृपा से वो आगे भी कृष्ण भक्ति का अनुशीलन करता रहता है तो वो कृष्ण भक्ति में परंगत बनकर और भगवान के धाम को सरलता से वापिस जाकर अपने सौभाग्य का विस्तार करते हैं। वैदिक साहित्य में अन्य कई स्थानों में उल्लेख मिलता है कि देवता भी भरतवर्ष की भूमि में आने के इच्छुक रहते हैं। केवल मूर्ख व्यक्ति ही अपने पुण्य कर्मों के बदले में स्वर्ग लोक की कामना करेगा, अन्यथा देवता भी भरतवर्ष में आकर देह धारण करना चाहता है, जिससे इसका उपयोग कृष्ण भवनामृत के अनुशीलन में किया जा सके। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बारंबार कहते हैं, भरत भूमि ते हाइल मनुष्य जन्म जार, जन्म सतक करी कार पार उपकार। भरत भूमि में जन्म लेने वाले मनुष्य को कृष्ण भक्ति अनुशीलन करने का विशेष अधिकार प्राप्त है। अतः जो पहले ही भरतवास में जन्म ले चुके हैं, उनका कर्तव्य है कि वे शास्त्रों तथा गुरुओं से शिक्षा ग्रहण करें तथा कृष्ण भवनामृत से पूर्णतया परिचित होने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु की अनुकंपना का लाभ उठाएं। इस तरह कृष्ण भवनामृत का पूरा पूरा लाभ उठाकर श्री भगवान के धाम को वापिस जाया जा सकता है। यंति माध्ये जनो पी माम, इसलिए कृष्ण भवनामृत आंदोलन विश्व भर में अनेक केंद्रों की स्थापना करके मानव समाज को यह सुविधा प्रदान कर रहा है, जिससे जन साधारण कृष्ण भवनामृत आंदोलन के शुद्ध भक्तों का संग कर सके, कृष्ण भवनम के विज्ञान को समझे एवं अंत में श्री धाम को वापिस जाए। ओम अज्ञान तिमिरंतस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुरन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति सपदान्तिकम्। Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalan Sri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupam Sagar Jatam Sagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savarutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Sri Vishagan Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Govika Kanta Radha Kanta Namastude Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshare Prishabhanu Sude Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatrubhyascha Kripa Sindhu Bhyevacha Pritanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nitananda Sri Adaita Gadadhara Shiva Jiri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare So, Parikshit ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को जम्बूद्वीप के बारे में बताता है और शुरुआत में इस अध्याय में किम पुरुष वास के बारे में उन्होंने बताया है जहां पर हनुमान जी विराजमान है और रामचंद्र भगवान सीता देवी और लक्ष्मण की पूजा कर रहा है और इसके बाद भारतवर्ष के बारे में बता रहा है और भारतवर्ष का गुणगान करता है तत्पश्चात भी देवता लोक के बारे में बताता है और वे भी भरद्वाज का गुणगान करते हैं और यहां पर श्लोक में बताता है कि भगवान श्री कृष्णा दयालु है कि इस भरद्वाज में आ जाता है ब्रह्मा जी के हर दिन आ जाता है द्वापर युग के अंत में भरद्वाज के केंद्र में वहां पर श्री वृंदावन धाम विराजमान है जो कृष्ण के बिना तो स्वरूप है और गोलोक धाम से बिना है बिन भी है या चिंत भेद भेद तत्व है श्री चैतन्य महाप्रभु उन्होंने अचिंत भेद तत्व दर्शन इसका प्रचार किया है और तो ये वृंदावन धाम वास्तव में ये सर्वोत्तम धाम है क्योंकि कृष्ण के धाम है वसस्थान है उन्होंने कृष्ण चंद्र भगवान यहाँ पर अवतरित हुए और उनके बहुत सुंदर लीलाएं तो प्रस्तुत किया है स्वेच्छा से बाली लीला कुमार लीला पोंगांद लीला इत्यादि जो अद्भुत है इसलिए कृष्ण का नाम भी है अद्भुत कृष्णा और उनके अद्भुत लीलाएं हैं और ये वास्तव में जो हम अभी कहते हैं ये भरद्वाज तो आजकल बहुत तो छोटा है पहले हमको भी मालूम है तो पाकिस्तान इसमें भी था और बांग्लादेश लेकिन ये देश जो अभी आजकल हम कहते हैं इंडिया लेकिन वास्तविक नाम है भरद्वाज और फिर से बदलना चाहिए वास्तव में और लेकिन यह आपको समझना चाहिए तो शास्त्र के अनुसार श्रीमद् भागवतम के अनुसार कि अभी जो भरद्वाज सर्वोच्चतम हो गया है देश पहले बहुत बड़ा है लेकिन वास्तव में अभी भी इस नाम से तो प्रसिद्ध है भरद्वाज सिर्फ सिर्फ जो हम अभी कहते हैं इंडिया है लेकिन ये सिर्फ एक छोटा सा भाग है उसमें पूरी दुनिया जो हमको मालूम है जैसे इसमें यूरोप है एशिया है अमेरिका है ये वास्तव में पहले सब भारतवर्ष था और वास्तव में आज भी फिर भी भारतवर्ष के एक भाग है क्योंकि जम्बूद्वीप तो ये एक बहुत बड़ा द्वीप है ये विभाजित है 9 भाग में तो केंद्र में है ये मंदारा पर्वत और इस केंद्र के वहाँ पर क्या वर्ष है इसका नाम इलावृत वर्षा है और उत्तर की ओर 2 वर्षा है दक्षिण की ओर 2 वर्षा है और वास्तव में इलावृत वर्ष के दक्षिण की ओर किम पुरुष वर्ष पहले आ जाता है इसके बाद ये भरत वर्षा और जो आपका भी मालूम है ये भौतिक जगत जो जिसमें भी अब स्थित है ये भरद्वाज के छोटा सा भाग है वास्तव में लेकिन वैज्ञानिक लोगों को इस उनको ना मालूम है और वैसे ही कि जो शास्त्र भी पढ़ता है और लेकिन जो विद्वान है जो शास्त्रविद है वेदांतविद है ये उनको मालूम है साधारण भक्त लोग भी नहीं मालूम है भरद्वाज कितना बड़ा है इसलिए वैष्णव के संग में रहना है जिनको मालूम है और लेकिन सिर्फ ये मालूम होना कि भरद्वाज कितना बड़ा है कहाँ पर है क्या है ये ठीक है ये एक बात है लेकिन वास्तव में यहाँ पर रहते हुए भजन करना है जैसे यहाँ पर भी तो सब देवता लोग तो प्रार्थना कर रहे हैं और उनकी इच्छा है यहाँ पर जन्म लेने के लिए भरद्वाज क्योंकि यहाँ पर भगवान आया है कृष्णचंद्र भगवान उनके वास स्थान है ब्रजधाम वृंदावन धाम ये 84 कोश ब्रजधाम और वैसे ही बंगाल की ओर वहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है नवद्वीप मायापुर नवद्वीप और ये भी वास्तव में आध्यात्मिक जगत के सर्वोत्तम जगत के बिना और अबिना स्वरूप है धाम है आध्यात्मिक जगत में हमेशा के लिए स्थित है वहाँ पर गोलोक धाम और शेतद्वीप नवद्वीप सर्वोत्तम जगत आध्यात्मिक जगत में ये कृष्ण लोक है ये 4 भाग में विभाजित है एक द्वापरपुरी है वहाँ पर रुक्मिणी देवी है सत्यभामा इत्यादि पत्रानिया कृष्ण के द्वारकाधीश के इसके बाद मथुरापुरी है वहाँ पर मथुरेश विराजमान है इसके बाद ब्रजधाम है यहाँ पर श्याम सुंदर और नंद बाबा और गोपियाँ यशोदा माँ हमेशा के लिए वहाँ पर लीला में लीन है कृष्ण केंद्र में है और वहाँ पर भी श्वेतद्वीप नवद्वीप हमेशा के लिए तो विराजमान है और वहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य शरीर सिर परिकार विराजमान है लेकिन कभी कभी तो भौतिक जगत प्रकट हो जाता है तब भौतिक जगत में तो अलग अलग तो ब्रह्मांड है और हम सबसे छोटे ब्रह्मांड में है इसलिए हमारे ब्रह्म जी तो उनके सिर्फ 4 मुख है चतुर्मुख ब्रह्म जी है और दूसरे ब्रह्मांड में 10 मुख ब्रह्म जी है 100 मुख ब्रह्म जी है 1000 मुख ब्रह्म जी है क्योंकि ब्रह्मांड बहुत इससे हमारे ब्रह्मांड से बहुत बड़ा है और हर ब्रह्मांड में यह तो विभाजित है त्रिलोक में स्वर्ग लोक भूलोक और नरक लोक और लेकिन 14 भुवन से भी है मतलब यह है भूलोक एक है इसके बाद स्वर्गलोक के 6 है जैसे तपलोक है स्वर्गलोक है महारलोक है जनलोक है और सबसे ऊपर है ब्रह्मलोक सत्यलोक है जहाँ पर ब्रह्म जी विराजमान है और नरक लोक भी है नीचे की ओर चाहे या साथ, तो और भूमंडल में जो केंद्र में है, ब्रह्मांड के केंद्र में है, ये इस भूमंडल में केंद्र है ये जम्बूद्वीप, लेकिन इसके अलावा भी छह और द्वीप है, सात द्वीप है, अभी सब नाम के याद ना है, क्रौंच द्वीप है, दूसरी द्वीप है, तो और हर द्वीप के बाद एक सागर है, जिससे हमारे जम्बूद्वीप के बाद सागर जो इसका पानी है तो नमक का पानी है, हमको तो मालूम है, देखता है जहाँ पर भी जाता है सागर, तो यहाँ पर दक्षिण की ओर और पश्चिम की ओर और पूर्व की ओर सब सागर जो है नमकीन पानी के सागर है, लेकिन दूसरे द्वीप में दूसरे दूसरे द्वीप के बाद जिसे ये नमक पानी के सागर पार करके दूसरे द्वीप है, और इसके बाद एक दूसरे सागर है, वो ये एक है जो शुद्ध जल के मीठा पानी के सागर है, इसके बाद दूसरे द्वीप है, इसके बाद दूसरे सागर है, एक है जो दूध के है, और इसके बाद दूसरे जो दही के है, दूसरे गन्ने का रस के सागर है, घी के है, तो अलग अलग सागर है, तो केंद्र में जम्बूद्वीप है, और तो आठ वर्ष में विभाजित है, तो दक्षिण की ओर भारतवर्ष है और बहुत बड़ा है, और वहाँ पर तो लेकिन वहाँ पर भारतवर्ष में भगवान श्री कृष्ण आ जाता है, तो जिस बाग हम अभी उपस्थित है वृंदावन धाम, यहाँ पर कृष्णा उनका जन्म हो 5000 वर्ष से पहले कृष्णचंद्र भगवान की, और इस जहाँ पर जदद्वनाय है तो नवद्वीप धाम श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, तो ये सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ पर है, और अभी मौका भी मिला है भजन करने के लिए, ठाकुर जी की सेवा करने के लिए, ये श्री चैतन्य महाप्रभु की आयतु की कृपा से संभव है, और उनके घनिष्ठ परिकार उनके प्रतिनिधि के माध्यम से हमको ये कृपा मिला है गुरु परंपरा के माध्यम से, तो इसलिए स्वर्ग के लोग भी यहाँ पर आना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर भजन करना हरे कृष्णा श्री चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्णा श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये कलयुग में रहते हुए भी, तो कलयुग में वास्तव में भजन करना मुश्किल है, क्योंकि लंबे आयु नाय है, वातावरण शुद्ध नाय है, तो जैसे ठाकुर जी की सेवा करने के लिए यज्ञ करने के लिए शुद्ध सामग्री मिलना भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु की आहेतु की कृपा से सिर्फ भजन करने के माध्यम से, विशेष करके महामंत्र के माध्यम से, महामंत्र के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बहुत जल्दी आगे जा सकता है और उत्तम अवस्था पर पहुंच सकता है भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप और अपना सच्चिदानंद स्वरूप अनुभव कर सकता है श्री चैतन्य महाप्रभु की आयु की कृपा से, और गुरुजान जो हमारे गुरु परंपरा में है उनकी कृपा से जल्दी आगे जा सकता है, अन्यथा बहुत मुश्किल है कलयुग में आगे जाने के लिए, तो ज्ञान के माध्यम से योग के माध्यम से संभव नहीं है वास्तव में, सिर्फ एक हरि ये कलयुग में एक ही रास्ता है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम है वह केवलम कोला नास्त्यव 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 गत्यरण्यथा, सिर्फ हरि नाम के माध्यम से उत्तम अवस्था पर पहुंच सकता है, लेकिन फिर भी तो भगवान की सेवा भी करना है, ठाकुर जी की सेवा करना है विधिवत पूर्वक, विशेष करके जब शुद्ध नाम का के अवस्थ पे नहीं है, जब अभास के अवस्थ पे है या अपराध नाम के अवस्थ पे है, तब सदसंग में रहना है और प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना है या भगवद गीता या श्री चैतन्य चरितमृत, प्रतिदिन हमको इसका श्रवण करना है, पढ़ना है ये शास्त्र और इसके बाद ठाकुर जी की सेवा भी करना है, तब अनुभव कर सकता है कि कृष्णा कृष्ण नाम बिना है। लेकिन जब आ गया है भक्ति मार्ग में तो हरि नाम के माध्यम से सब कुछ अनुभव कर सकता है, अपना स्वरूप भगवान का स्वरूप कृष्ण कृष्ण नाम बिना है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध निर्भुक्त अभिनत्व नाम नामिना कृष्ण कृष्ण नाम बिना है। तो जब रोज रोज प्रतिदिन अच्छे तरह से जप करता है, सदसंग में ठाकुर जी की सेवा करते हुए भगवत श्रवण करते हुए कृष्ण के बारे में विशेष करके ब्रज के कृष्णा उनके श्रवण उनकी लीला के सुंदर लीला के श्रवण करते हुए तो जब अच्छे तरह से प्रतिदिन करता है तो समय आएगा तब जब के समय कृष्ण का सुंदर रूप देख सकता है और उनकी लीला लीला भी देख सकता है। शुद्ध वैष्णव निरंतर भगवान का स्वरूप उनके दिव्य स्वरूप देख सकता है, उनकी लीलाएं का दर्शन मिल सकते जब के समय। तो हमको रोज रोज प्रतिदिन अच्छे तरह से जप करना है, सेवा करना है और इसे करते हुए हम जल्दी आगे जा सकता है। दूसरे जैसे स्वर्ग लोग में ये भी कहते हैं यहाँ पर, क्योंकि वहां पर तो भगवान के विस्तार रूप भी वहां पर भी जाता है, लेकिन ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर वहां पर नहीं जाता है, सिर्फ कभी कभी जैसे 5000 वर्ष से पहले तो द्वारका में थे वहां पर, तो एक बार वहां पर गए इंद्रलोक के पास गए और वहां से मिले थे इंद्रदेव से और वहां से एक पारिजात फूल ले लिया और रुक्मिणी को दिया और बाद में तो उनके दूसरे पत्रानी स्वयं ये सत्यभामा उनका अच्छा नहीं लगा, रुक्मिणी को दिया मेरे को क्यों नहीं दिया, तो मान अवस्था में पहुंच गया तर्ज क्रोधित थे तो लेकिन ये आध्यात्मिक क्रोध है, कृष्ण केंद्र में है और प्रेम से उनके संबंध है, कृष्ण के प्रेम संबंध है। तो ये देखकर कृष्णा तो ने बोला ठीक है कोई बात नहीं है सत्यभामा, सिर्फ तो मैंने सिर्फ एक फूल ले लिया रुक्मिणी के लिए, मैं फिर से जाऊंगा वहां पर एक पूरा वृक्ष तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा, और फिर से वहां पर गया और ले लिया वृक्ष। और इंद्रदेव ने बोला आप क्या कर रहे हैं कृष्णा, ये भौतिक जगह के भूमंडल के लोग के लिए नहीं है, ये परिजात वृक्ष नहीं ले सकता है। तो उनके गलती हो गया और कृष्णा तो ले लिया और तो उनसे युद्ध करने के लिए तैयार था, लेकिन बाद में होश में आया और समझ लिया कि ये तो हमारे तो भगवान है तो ऐसा नहीं करना है मुझे। तो हाँ तो देवता लोग भी वहां पर क्योंकि बहुत ऐश्वर्य है इंद्रिय तृप्ति है इसलिए कभी कभी भगवान को भूल जाता है और गर्वित हो जाता है, मैं इंद्र मैं स्वर्ग लोक के स्वामी हूं, सब मेरे वहां पर उनके मैं उनके सेवक गण है सबके स्वामी हूं और इसे कभी उनको भूल जाता है, लेकिन फिर भी तो भक्ता है। लेकिन यहाँ पर भगवान की कृपा से भूमंडल में बहुत सारे समस्या आ जाता है जिससे हम हमेशा विनम्र रह सकता है, ज्यादा कभी ज्यादा गर्मी है यहाँ पर जैसे ब्रज में भी गर्मी ऋतु ये बहुत गर्मी है तो उसी समय थोड़ा सा मुश्किल है रहना यहाँ पर, शिष्य ऋतु भी बहुत ठंड है तो, लेकिन आजकल तो हीटर भी है गर्मी ऋतु एसी है, पहले कुछ नहीं था जब मैं पहले यहाँ पर आया 1980 कोई एसी नहीं था, बिजली भी नहीं थी, हर रोज चली जाती थी 1-2 घंटे के लिए, कभी कभी 5-6 घंटे के लिए, इन्वर्टर नहीं थे तो थोड़ा सा मुश्किल था और आज थोड़ा सा सरल है, लेकिन फिर भी समस्या तो आ जाता है, बीमारियाँ इसके बाद दूसरे लोग के माध्यम से कभी कभी बंदर और कुत्ते लोगों को काटता है और छीन लेता है बंदर चश्मा और छोटे से समस्या आ जाता है। इसे कहते हुए हम समझ सकते हैं कि हम यहाँ के स्वामी नहीं है, हम तुच्छ है, भगवान के दास है, लेकिन फिर भी भक्त लोग भी गर्वित हो जाते हैं कभी कभी। इसलिए जब गर्वित हो जाता है तो समस्या जरूर आएंगे, क्योंकि कृष्ण नहीं चाहता है कि भक्त लोग गर्वित है, और जब गर्वित है तो वास्तव में अच्छा तरह से भजन नहीं कर सकता। इसलिए महाप्रभु आया है हमको दिखाने के लिए कि हमको विनम्र रहना है, विनम्र भाव में रहना है, विनम्र होने चाहिए। भगवान ही है लेकिन भक्ति के रूप में आया है, बहुत विनम्र थे हमेशा, और बाद में उनको भी मालूम था कि ये भगवान है, तो और उनसे भी बोलते थे आप तो भगवान है, तो ऐसे करके बोले नहीं 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 आप क्या बोल रहे, विष्णु 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 भगवान है, हम कृष्ण विष्णु के दास हूं। हमेशा भी नम्र भाव में थे। उनका जन्म तो ब्राह्मण के कुल में है, द्विज शिरोमणि है, भगवान ही है, वर्ण आश्रम से परे, लेकिन फिर भी उनका जन्म तो स्कूल में ब्राह्मण के कुल में हुआ, लेकिन फिर भी हमेशा भी नम्र थे। विशेष करके संन्यास आश्रम में प्रवेश करते हुए पुरी में चले गए, वहाँ पर भी विनम्र भाव में रहते थे। और जैसे यहाँ पर लोक विचार भी है और अलग अलग नियम है सन्यासी के, सब अच्छे तरह से पालन करते थे। उदाहरणार्थ के लिए हमको दिखाने के लिए कि हमके विनम्र भाव में रहने चाहिए, विनम्र होना चाहिए, दूसरे को सम्मान देना है। त्रिनार पिशुनी चेना तरोर पिसहिष्णुना अमानिना अमानिना कीर्तनीय सदहरी, और निरंतर भगवान का नाम लेते थे और कहते थे, जिसे उपदेश देते थे चे गोस्वामी को, रूप गोस्वामी को प्रयाग में, सनातन गोस्वामी को वाराणसी में, और रघुनाथ दास गोस्वामी पुरी में उपदेश देते थे, दिए थे कि भगवान के बारे में, और उनको भी आदेश दिए थे कि आपको ये भक्त और शरण लोग के हित के लिए आपको अलग अलग ग्रंथ आपको लिखना है, और भगवान के बारे में आपको बताना है, विशेष करके कृष्ण के बारे में और भक्ति मार्ग के बारे में आपको अलग अलग ग्रंथ आपको लिखना है। और तो जैसे पुरी में रघुनाथ दास को भी उपदेश दिया है, उनको भी बोल दिया अमानिना मानना कृष्ण नाम सदलभे ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मनुष्य करीबे, तो विनम्र भाव में रहते हुए हमेशा कृष्ण नाम लेना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मनुष्य करीबे, और मन से कृष्ण की सेवा करना है। लेकिन ये सिर्फ संभव है जब अच्छा तरह से भजन किया है और ठाकुर जी की सेवा भी किया है, उनके बारे में श्रवण किया है कृष्ण के बारे में, तब मन से उनकी सेवा भी कर सकता है जब आगे है। तो भगवान श्री कृष्ण परम दयालु है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के से और भी दयालु है ये श्री चैतन्य महाप्रभु है, सबसे दयालु है। इसलिए हमारे पूर्वाचार्यों ने तो उनके गुणगान भी किया है, नम महावदन्य या कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः, सबसे दयालु है श्री चैतन्य महाप्रभु। तो कृष्ण भी कहते थे सर्वाधर्मान परिज्यज्या माम एकम शरणम भज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्ष माशुचा, सब दूसरे धर्म छोड़ दो। जैसे इस भौतिक जगह में अलग अलग धर्म है, जैसे ये वान आश्रम धर्म है, वान आश्रम के अनुसार भी चलना है हमको, लेकिन भगवान केंद्र में है और हमको समझना चाहिए कि हम इससे परे है, और कृष्ण के अनुसार हमको सब कुछ करना है। अनुकूलन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति रोत्तम, तो और तो कहता है कि ये सब मतलब ये गुण धर्म है वाना आश्रम, मुख्य धर्म है भक्ति के मुख्य अंग है नाम कीर्तन, तो कृष्ण के गुणगान कृष्ण की सेवा। लेकिन फिर भी तो जब मनुष्य शरीर में है तो इस भौतिक जगह में रहता है तो वाना आश्रम के अनुसार भी हमको चलना है, लेकिन मुख्य अंग नहीं है, अलग अलग वर्ण के आश्रम के जो नियम है। और लेकिन तो इससे भी दयालु है श्री चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण से भी दयालु है, क्योंकि उन्होंने भी बोला है कि आपको सिर्फ नाम लेना है, कृष्ण नाम लेना है और नियम का भी पालन करना है, लेकिन अगर अच्छे तरह से नहीं भी कर सकते, अलग अलग नियम पालन करना, अगर नाम कृष्ण नाम लेता है तो आगे जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर जल्दी आगे जाना है और उत्तम अवस्था पर पहुंचना है जो वन आश्रम के नियम का पालन भी करना है और विनम्र भाव में रहना है और ऐसे करते, लेकिन महाप्रभु दयालु है और जो नीचे भी है जिनके संस्कार ना हुआ पहले से ये भी आगे जा सकता है और उत्तम अवस्था पर भी पहुंच सकता है। और कि पविप के बिना शिशुर नहीं, कि पविप के बिना शिशुर कहीं ना, यही कृष्ण तत्ववेत्त सही गुरु है। तो अगर शूद्र के परिवार से भी आया है, अगर भक्ति मार्ग में आ जाता है, शूद्र वैष्णव के संग में रहता है, अच्छे तरह से साधन भजन करता है तो वैष्णव के वस्त्र पर पहुंच सकता है और वैष्णव ब्रह्म से भी श्रेष्ठ है तो ये भी गुरु बन सकता है और दूसरे की उद्धार भी कर सकता है जब शुद्ध वैष्णव के संग में है और शुद्ध हो जाता है। और इसके बाद तो महाप्रभु कहता है यारे दे कहता है का कृष्ण प्रदेश अमार आज्ञा गुरु अनता देश, तो हमने सीख लिया है भगवान के बारे में, सुन लिया है और इसलिए दूसरे को भी बताना है, ये वैष्णव के कर्तव्य है तो भजन करना है, इसके बाद तो दूसरे को भी बताना है भजन करना है। और यहाँ पर भी प्रभुपाद तात्पर्य में भी उल्लेख किया है भरत भूमि ते हाइला मनुष्य जन्म जार जन्म सत करी कर परोपकार, तो ये सब वैष्णव के लिए है जो हमारे आंदोलन में है, तो उनको देखना है कि उत्तम अवस्था पर पहुंच सकता है, इसके बाद दूसरे के हित के लिए प्रचार करना है, उनकी सहायता करना है। लेकिन उत्तम अवस्था पर पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन कम से कम हमको देखना है कि हम मध्यम अवस्था पर पहुंच सकता है, कनिष्ठ अवस्था में नहीं रहना चाहिए, लेकिन कम से कम मध्यम अवस्था पर पहुंचना है, विनम्र भाव में रहते हुए निष्कपट भाव से तो कृष्ण के गुरु कृष्ण के गुरु गौरांग कृष्ण के आदेश अनुसार इसमें लीन होना चाहिए, भजन में सेवा में, और इसके बाद दूसरे की सहायता भी करना है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम अभी इस आंदोलन में है जिससे हम अभी जल्दी आगे जा सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवताम की, श्रील प्रभुपाद की।